डॉक्टर सुनील जोगी की हास्य व्यंग की कविताओं का ये कैसेट जोगी हास्य हंगामा। मेरा सौभाग्य कि मुझे इस लायक चुना गया कि मैं इसका परिचय दूं। लोग मुझसे पूछते हैं हास्य और व्यंग में क्या फर्क है, तो मैं एक ही बात कहता हूं, हास्य जो है सोचने से मुक्त करता है, व्यंग सोचने के लिए विवश करता है। सुनील जोगी की ये कविताएं चाहे हास्य की हों या व्यंग की हों या हास्य व्यंग की हों, कहीं न कहीं लोगों को गुदगुदाएंगी, सोचने पर भी विवश करेंगी और सजग तो करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। दोस्तों, जोगी हास्य हंगामा सुनने वालों को ओपी राठौर का नमस्कार। डॉक्टर सुनील जोगी आज हिंदुस्तान के काव्य प्रेमियों के लिए एक जाना पहचाना नाम है। नई पीढ़ी के सर्वाधिक चर्चित, ऊर्जावान और विविध विधाओं में सृजन करने वाले सुनील जोगी ने अपने परिश्रम, लगन एवं प्रतिभा से अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और नॉर्वे जैसे अनेक देशों में उनकी कविताओं और मंच संचालन ने श्रोताओं को आनंदित किया है। देश के विभिन्न भागों में हजारों कवि सम्मेलनों के माध्यम से उन्होंने लाखों करोड़ों काव्य प्रेमियों को अपने काव्य रस में डुबोया है। उनकी सहज, सरल एवं दिल में समा जाने वाली शैली एवं मृदु व्यवहार के सभी मुरीद हैं। लगभग 35 किताबों की रचयिता सुनील जोगी ने अनेक फिल्मों, धारावाहिकों एवं ऑडियो कैसेट्स के लिए भी लिखा है। उनके गीत, गजल, भजन एवं कविताओं की अनेक ऑडियो कैसेट्स भी बाजार में आ चुकी हैं। अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर जोगी राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ भी लिखते हैं। साहित्य, संगीत, राजनीति एवं मीडिया में अपनी गहरी रुचि एवं पहचान रखने वाले डॉक्टर जोगी न केवल एक कुशल कवि, संगठनकर्ता एवं वक्ता हैं, बल्कि हजारों लाखों की भीड़ को अपने शब्दों द्वारा नियंत्रित एवं सम्मोहित करने की सामर्थ्य रखते हैं। वे गंभीर से गंभीर विषयों से भी हास्य निकाल लेते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हंसाने को पुण्य का कार्य मानने वाले डॉक्टर जोगी आज हमारे साथ एक मेहमान के रूप में उपस्थित हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और ढोल की पोल की अपार सफलता के बाद सुनते हैं उनकी अगली कैसेट जोगी हास्य हंगामा।
नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां आए। देश में 100 करोड़ लोगों में से 100 लोग भी हंसने के लिए, दिल में बसने के लिए या यूं कहें कि फंसने के लिए नहीं मिलते। आप लोग आए हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि निदा फाजली साहब कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। दोस्त जो हंसता है वो फंसता है, मगर जो नहीं हंसता है वो उससे ज़्यादा फंसता है। जिंदगी के जंजाल में, समस्याओं के बवाल में हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनहूसियत और मुस्कराहट में बस 1 इंच की दूरी है। जो वो दूरी मिटाता है वही इंसान सबके दिल में समा जाता है, जो नहीं मिटाता है वो मनहूस, कुंठित, ईर्ष्यालु और न जाने क्या क्या कहा जाता है, क्योंकि हंसी ही वो वरदान है जिसे भगवान ने सिर्फ इंसान की किस्मत में लिखा है, वरना क्या कभी कोई जानवर आपको हंसता हुआ दिखा। संसार का हर प्राणी रो सकता है, आंसुओं का समंदर बहा सकता है, मगर केवल इंसान ही है जो हंस सकता है, मुस्करा सकता है और खुलकर ठहाका लगा सकता है। इसलिए हंसो, हंसो और ऐसे हंसो जैसे कोई बच्चा हंसता है, जैसे कोई सच्चा हंसता है। ऐसे मत हंसो जैसे द्रौपदी हंसी थी दुर्योधन के गिरने पर, लक्ष्मण हंसे थे सूर्पणखा की नाक कटने पर, नंद हंसा था चाणक्य की शिखा पर, हिरण्यकश्यप हंसा था प्रहलाद की भक्ति पर, बाली हंसा था अपनी शक्ति पर, रावण हंसा था हनुमान की पूंछ पर और वीरप्पन हंसता है अपनी मूंछ पर। ऐसे हंसो दोस्त जैसे समुद्र में लहरें हंसती हैं, गजलों की बहरें हंसती हैं, पानी में मछलियां हंसती हैं, फूलों पर तितलियां हंसती हैं, सूखे में बरसात होने पर किसान हंसते हैं, और ऐसे हंसो जैसे जंग जीतने के बाद सीमा पर जवान हंसते हैं। और ऐसे हंसो जैसे जंग जीतने के बाद सीमा पर जवान हंसते हैं। कभी मत हंसो किसी गरीब लाचार पर, खाट पर पड़े बीमार पर, किसी औरत के फटे हुए आंचल पर, अंधे लंगड़े या पागल पर, बेरोजगारी ढोते पढ़े लिखे नौजवान पर, और कभी मत हंसो गंजी खोपड़ी वाले पहलवान पर। हंसना ही है तो तब हंसो जब किसी बेघर को छत मिल जाए, गांव के बूढ़े पिता को बेटे की नौकरी का खत मिल जाए, जब किसी गरीब कन्या को बिना दहेज के वर मिल जाए, जब पिंजरे में बंद परिंदे को पर मिल जाए, और हंसो जब रेगिस्तान की रेत में कोई नहर निकल जाए, अदालत के चक्कर काटते काटते किसी गरीब को इंसाफ मिल जाए। हंसो जिस दिन देश में कहीं भी दुर्घटनाएं न घटें और मानवता के दुश्मनों की गर्दनें सरेआम कटें। और ज्यादा हंसो जब पूरा भारत जनगणमन गाते हुए, तिरंगा लहराते हुए, कदम से कदम मिलाकर मुस्कराते हुए उन्नति के शिखर पर जाए, और उससे भी ज्यादा हंसो दोस्त जब अपने सीने में सैकड़ों दर्द समेटे हुए कोई हास्य कवि अपनी हास्य कविताएं सुनाए। हंसना बहुत कठिन काम, इतना आसान नहीं है। मैंने एक महिला से पूछा, आपकी साड़ी मेरी कमीज से ज्यादा सफेद है, इसमें क्या भेद है, कौन से वॉशिंग पाउडर से कपड़े इतने सफेद होते हैं? वो बोली, ये तो मेरे पति ही बता सकते हैं, क्योंकि घर के सारे कपड़े वही धोते हैं। पिछले दिनों मेरे एक मित्र हैं, उनके घर गया, उनका छोटा सा बच्चा बाहर खेल रहा था, अंदर बड़ी धूमधड़ाम की आवाजें आ रही थी। मैंने कहा, बेटे पिताजी घर में हैं? बोले, हाँ अंकल हैं। मैंने कहा, अंदर ये धूमधड़ाम की आवाजें कैसी आ रही हैं? बोले, कुछ नहीं अंकल, मम्मी कपड़े कूट रही हैं। मैंने कहा, कपड़ों से तो ऐसी आवाजें नहीं आती। बोला, हो सकता है कपड़ों में पिताजी भी हों। तो आप सब ऐसे पिता हैं, मैं बहुत आपको बधाई देता हूं। अध्यापक ने छात्र से पूछा, बेटा इधर आओ और 1 किलोमीटर सड़क में कितने मीटर होते हैं ये बताओ। छात्र बोला, गुरुजी आप व्यर्थ में धीरज खोते हैं, 1 किलोमीटर की सड़क में 1000 मीटर और 1500 गड्ढे होते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अगल बगल रहते थे। हिंदुस्तानी आदमी किस तरह से निपटाता है दूसरे को, मैं आपको बताता हूँ। एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अगल बगल रहते थे, दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन कहते थे। एक दिन हिंदुस्तानी की मुर्गी ने पाकिस्तानी के बगीचे में अंडा दिया, पाकिस्तानी ने उठा लिया। हिंदुस्तानी बोला, मुर्गी मेरी इसलिए अंडा मेरा। पाकिस्तानी बोला, मेरे बगीचे में दिया इसलिए मैंने उठा लिया। झगड़ा बढ़ गया साहब, पाकिस्तानी भी अड़ गया। हिंदुस्तानी बोला, चलो एक समझौता करते हैं, मैं तुम्हें मार मार कर अधमरा करता हूँ, तुम मुझे मार मार कर अधमरा करना, जो पहले उठेगा अंडा उसी को मिलेगा। पाकिस्तानी ने करार कर लिया, हिंदुस्तानी ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, बेहोश कर दिया साहब। 2 घंटे बाद पाकिस्तानी को होश आया तो चिल्लाया, अबे हिंदुस्तानी अब मेरा नंबर है, बाहर निकलो बाहर निकलो। हिंदुस्तानी भीतर से ही बोला, यार एक अंडे के लिए खून खराबा ठीक नहीं, तुम ही रख लो। हिंदुस्तानी आदमी बड़ा तेज होता है। अच्छा होता क्या है कि बाहर से तो फैशन का आदि होता है और भीतर भीतर से पूरा परंपरावादी होता है। एक दिन एक साहब रेमंड के सूट पर स्लीपर पहने जा रहे थे। मैंने कहा, 10,000 के सूट पर 10 रुपए की स्लीपर? बोले, कुछ नहीं, हमारी परंपरा है। पिताजी सूट पर स्लीपर पहनते थे, पिताजी के पिताजी सूट पर स्लीपर पहनते थे, पिताजी के पिताजी के पिताजी भी सूट पर स्लीपर पहनते थे। मैं भी पहनकर ऑफिस जा रहा हूँ, परिवार की परंपरा निभा रहा हूँ। अगले दिन और भी अजीब ढंग से आए थे, कुर्ते पजामे पर टाई लगाए थे। मैंने कहा, कुर्ते पजामे पर टाई? वे बोले, परंपरा है, पिताजी लगाते थे, पिताजी के पिताजी लगाते थे, पिताजी के पिताजी के पिताजी भी लगाते थे। मैं भी लगा रहा हूँ, परिवार की परंपरा निभा रहा हूं। अगले दिन मैंने उनसे कहा, आप तो पक्के हैं परंपरावादी, फिर ये बताइए क्यों नहीं की अभी तक शादी? बोले, परंपरा है, पिताजी ने नहीं की, पिताजी के पिताजी ने भी नहीं की थी, पिताजी के पिताजी के पिताजी ने भी नहीं की थी, इसलिए मैं भी मुसीबत का मारा हूं, 2 बच्चों का बाप होते हुए भी कुंवारा। एक शायर मुशायरे में अपनी नई गजल सुना रहे थे। दो पाजामे, छह कुर्ते, चार चादरें, तीन तौलिए, पांच साड़ियां, दस मोजे, 40 दे दिए, 60 बचे। इतना सुनते ही एक श्रोता बोला, अबे क्या सुना रहा है, लगता है तेरा दिमाग चकरा गया है। शायर बोला, नहीं यार, गलती से गजल की बजाय धोबी का पर्चा आ गया। मेरे एक मित्र हैं किरण जोशी, सिर में पट्टी बांधे मिले। मैंने पूछा, चोट कैसे लगी, ये गुल कहाँ खिले। बोले, दरअसल कल रात हमने शादी की सालगिरह मनाई, पत्नी ने पुष्प वर्षा की, ये चोट उसी से आई। मैंने कहा, फूलों से तो इतनी चोट नहीं लगती बरखुरदार। वे बोले, फूलों के साथ फूलदान भी तो था यार। ईरान और इराक को लड़ते लड़ते 4 साल हो गए, ये बात जब मेरी सास ने सुनी तो उनके होश खो गए। बोली, कमाल है, मैं तो उनकी ताकत के गुण गाती हूं, 4 साल में भी नहीं थके। अरे मैं तो पड़ोसन से लड़कर 5 मिनट में ही थक जाती हूं। तालिबान को निपटाकर भी जॉर्ज बुश बहुत शर्मिंदा है। क्योंकि मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन दोनों अभी जिंदा हैं। दूसरे इस बात का गम और भी सता रहा है कि क्लिंटन की किस्मत में तो मोनिका आई थी, हमारी किस्मत में ये मुल्ला आ रहा है। अपनी अपनी किस्मत की बात है साहब। अच्छा, हास्य साहब कहीं से भी निकल आता है, हास्य के लिए किचन तक से हास्य निकल आता है। दाल ने कुकर से कहा, तू मुझे देखकर सीटी क्यों मारता है। देखिए साहब, हास्य कहां से निकलता है। दाल ने कुकर से कहा, तू मुझे देखकर सीटी क्यों मारता है। कुकर बोला, जाने मन, जब तू मेरे तन बदन में आग लगाती है तो सीटी अपने आप ही निकल जाती है। लिफाफा कहता है डाक टिकट से, जाने मन मुझसे चिपक जा, पूरी दुनिया घुमा दूंगा। हास्य के लिए कहीं से भी हास्य निकलता है। एक और घटना मुझे याद आती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अंतरिक्ष में यात्री भेजने के लिए इंटरव्यू ले रही थी, बदले में मुंह मांगे रुपए दे रही थी। पहला उम्मीदवार पाकिस्तानी था। बोला, जहां कहें जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, मगर बदले में 1 करोड़ रुपया लूंगा और अपने बीवी बच्चों को दूंगा, ताकि हम वापस ना आए तो बेचारे भूखों ना मर जाएं। दूसरे पर थी एक अमेरिकी की बारी, वो भी था आमंत्रण के लिए आभारी। बोला, 3 करोड़ रुपए लूंगा, 1 करोड़ बीवी को दूंगा, बाकी 2 करोड़ से चंद्रमा पर कोई बिजनेस कर लूंगा। अंत में एक हिंदुस्तानी आया साहब, हिंदुस्तानी बहुत कमाल के होते हैं। अंत में एक हिंदुस्तानी आया, बोला, मुझे चुनेंगे तो 5 करोड़ रुपया लूंगा भाया, 2 करोड़ तो आपको चुनने का कमीशन दूंगा, 2 करोड़ अपनी मेहनत के रख लूंगा और 1 करोड़ देकर अपनी जगह बेवकूफ पाकिस्तानी को भेज दूंगा। कहीं से भी हास्य निकलता है। एक कवि जी कविता सुना रहे थे साहब, मेरी जिंदगी का ये हाल है, मेरा सांस लेना मुहाल है, मेरी जिंदगी का ये हाल है, मेरा सांस लेना मुहाल है। नीचे से एक श्रोता बोला, तू भी क्या गजब की चीज है, तू शायर है या दमे का मरीज है। ऐसे ऐसे कहीं से भी हास्य निकलता है साहब। एक कवि कविता सुना रहा था, एक डिब्बे पर दूजा डिब्बा, दूजे पर था तीजा डिब्बा, तीजे पर था चौथा डिब्बा, चौथे पर था पांचवा डिब्बा, पांचवें पर था छठवां डिब्बा, छठवें पर था सातवां डिब्बा, सातवें पर था आठवां डिब्बा, आठवें पर था नौवां डिब्बा, नौवें पर था दसवां डिब्बा, दाएं डिब्बा बाएं डिब्बा, डिब्बे के ऊपर था डब्बा, डब्बे के नीचे सा डब्बा, हे मेरे रब्बा हे मेरे अब्बा, डब्बा 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 डब्बा। इतना सुनकर एक श्रोता बोला, साहब कि तू कविता सुना रहा है या डिब्बे गिना रहा है। कभी बोला, फालतू बातें मत बनाओ, कविता पर नहीं बैलेंस पर तालियां बजाओ। एक गीत सुनाता हूं आपको। होता क्या है कि आदमी प्यार भी कर लेता है, लेकिन कई बार आदमी का प्यार सफल नहीं होता, जोड़ी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्या क्या अंतर रह जाते हैं। एक विरोधाभास का गीत आपको सुनाता हूं, अंतर का गीत है। एक एक पंक्ति में आपको लगेगा कि कितना अंतर है, वो आप अपने जीवन में देख सकते हैं। और इसे आप अगर आरती की तरह घर में दैनिक जीवन में प्रयोग करें तो आपकी कभी लड़ाई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उन अंतरों पर आपका विशेष ध्यान चाहूँगा, एक एक पंक्ति पर आपके ठहाके चाहूँगा। मैं सुनाता हूँ कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। पहला अंतर देखें कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ, तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ, तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लम्ब्रेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे, सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। और अंतर देखें कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय, तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय, तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय, तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं अल्मुनियम का थाल प्रिय, तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय, तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय, तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय, तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय, मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय, मुश्किल है प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, मैं शनि देव जैसा कुरूप, तुमको मलकंचन काया हो, मैं तन से मन से कांसी हूँ, तुम महाचंचला माया हो, तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ, तुम राजघाट का शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ, तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की, तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की, तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की, तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की, तुम जेट विमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम पेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम मर्सिडीज हो लंदन की, मैं कचरा घर की लॉरी हूँ, तुम फंसने योग्य रूप सी हो, मैं फांसी का अधिकारी हूँ, तुम विश्व बैंक की चेयरमैन, मैं झोला छाप भिखारी हूँ, तुम शादी की शहनाई हो, मैं मैयत की तैयारी हूँ, तुम हो बंगले की मैं मुसाब, मैं चपरासी सरकारी हूँ, तुम हो बंगले की मैं मुसाब, मैं चपरासी सरकारी हूँ, तुम मोपेड जैसी हल्की हो, मैं बुलडोजर सा भारी, तुम मोपेड जैसी हल्की हो, मैं बुलडोजर सा भारी हूँ, तुम हो डोमेस्टिक एयरपोर्ट, मैं बिन पटरी की रेल प्रिय, मुश्किल है खेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कुछ और अंतर देखें कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ, तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ, तुम एके 47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ, तुम चतुर राबड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ, और तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़ियाघर का भालू हूँ, तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं बीपी सिंह सा खाली हूँ, तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं बीपी सिंह सा खाली हूँ, तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ, गर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय, मुश्किल है अपना, गर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कुछ और अंतर देखें कि मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो, मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो, मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेबल की बोतल हो, मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेबल की बोतल हो, तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृषि दर्शन की झाड़ी हूँ, तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृषि दर्शन की झाड़ी हूँ, तू विश्व सुंदरी सी महान, मैं ठिलिया छाप कबाड़ी हूँ। तुम सोनी का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोंगा, तुम मछली मान सरोवर की, मैं सागर तट का हूँ घोंगा। दस मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, मुश्किल है अपना। कुछ राजनीतिक अंतर देखें साहब, राजनीति से जिस तरह के मैं अंतर खोज के लाया हूं। तुम जयप्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली दाढ़ी हूँ, तुम सुषमा जैसी विदुषी हो, मैं लल्लू लाल नाड़ी हूँ, तुम जया जेटली सी कोमल, मैं सिंह मुलायम सा कठोर, तुम उमा भारती सी सुंदर, मैं नरसिम्हा की तरह बोर, तुम उमा भारती सी सुंदर, मैं नरसिम्हा की तरह बोर, तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ, तुम हो ममता, तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ, तुम हो ममता जयललिता सी, मैं क्वारा अटल बिहारी, तुम हो ममता जयललिता सी, मैं क्वारा अटल बिहारी हूँ, तुम संसद की सुंदरता हो, मैं हूँ तिहाड़ की जेल प्रिय, मुश्किल है मेल प्रिय, ये क्या नहीं है खेल प्रिय। और अंतिम पंक्तियाँ कि अगर मेल नहीं हो पाया तो क्या करेगा नायक, मैं पढ़ता हूँ कि मिट्टी का तेल छिड़क लूंगा अपने दिल के अरमानों पर, अपना सब प्यार उड़े लूंगा मैं खानों में पैमानों पर, जो प्रेम पत्र लिखे तुमने उनसे तकिया बनवा लूंगा, आंखों में आंसू भर कर के नगमे मुकेश के गालूंगा, अगर तेरा प्यार नहीं पाया तो जीवन सकल गंवा दूंगा, सच कहता हूँ हे राम कलीक रोज संखिया खा लूंगा, तेरी गलियों में बेचूंगा असली सर का तेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सोच रहा होगा कि मैं इतनी बात बोल दी और कैसेट में यू पतो भी नहीं लाग सके कि सुरेंद्र शर्मा बोल रहे कि कोई और बोल रहे, और मैं हरियाणा का हूँ और डॉक्टर सुनील जोगी जो है यूपी का है, यूपी और हरियाणा में कोई आपसी मेलजोल हो भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ हर एक को जी लगा कर बोलते हैं और हमारे यहाँ कोई किसी को जी लगा दे तो उसका जी निकाल लें। पर मुझे इतना मालूम है जितना मैंने सोचा नहीं उससे ज़्यादा तो अगले ने लिख लिया, 35 किताबें आ गई अगले की, 25 ऑडियो कैसेट आ गई, विदेशों तक मैं घूम आया, कई इसको सम्मान मिल गए। मेरा भी गांव वालों ने एक बार कहा था, मैंने गांव वालों से भाई मेरा सम्मान कर दो, तो उन्होंने कहा गांव छोड़ देंगे लेकिन सम्मान नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ तो सारा टेढ़ा मामला है। हास्य जो है बड़ो कठिन काम है, ये ऐसे ही है जैसे रेत में से तेल निकालना, तेल भी सरसों का तेल निकालना, मिट्टी का तेल तो निकलता ही है, पेट्रोल तो निकलता ही रेत में, जो चीज़ पूरे संसार में कहीं नहीं दिखाई दे रही, पूरे देश में कहीं नहीं दिखा रही, उसमें से हंसी निकालना बड़ा कठिन काम है। उनमें से हंसी निकालना भी आसान काम है लेकिन उसको हंसी को गाना और भी कठिन काम है। जिंदगी में कितनी भी अच्छी बात हो लेकिन उसका गड़ा बेसुरा हो तो सुनने वाला भाग ले। यही वजह है कि मैं कभी हास्य कविताओं को गा नहीं सका क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं गाता तो मेरा अंतिम काव्य पाठ होता, लोग अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन सुनील जोगी जिस खूबसूरती से लिखता है उसी खूबसूरती से उन्हें गावे भी है, और हरियाणा में तो गा करके गाली भी दी जावे तो भी अच्छी लगे, अगर गा करके कोई हास्य कविता पढ़े तो उसका तो कह नहीं कह। जहाँ तक व्यंग की बात है, सुनील जोगी को जो व्यंग है, दो तरह का व्यंग होते, एक तो सुनने वाला ने घायल कर दे कि अगलो पानी मांगने लग जावे, दूसरो व्यंग हो वह जो सुनने वाला ने सजग कर दे, जगा दे। तो सुनील जोगी को व्यंग जो है वो सुनने वाला ने जगा, वो ज्यांग के ऊपर भी लिखी जावे। है तो ये नयो कवि, लेकिन काम मैंने बहुत बड़ो कर लियो है। और मैं चाहूँ कि इस जोश के अंदर और भी नई हास्य कविताओं को कैसेट आवे, तो कम से कम देश के उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ो उपकार होगो जो हंस तो नहीं सका लेकिन औरा की हंसी सुनने तक ने भी तरस गया। रोते हुए मनुष्य चेहरे पर अगर हल्की सी मुस्कुराहट आ जावे तो ये काम किसी भी मंदिर निर्माण से कम को नहीं।
एक राजनीतिक घटना आपको सुनाता हूँ। दिन भर राजनीति के बीच रहता हूँ इसलिए राजनीति से कविता निकालता हूँ। उस घटना को एक गाने की पंक्ति से अंत में जोड़ता हूँ। आपको अगर अच्छी लगती है वो पंक्ति, आपको लगे कि मैंने बिल्कुल सटीक ढंग से जोड़ी है, तो आपका मन और समर्थन चाहता हूँ। एक घटना से शुरुआत करता हूँ कि जब संकट में सरकार पड़ी, माया की खटिया हुई खड़ी, जब बागी ना संतुष्ट हुए, अपने भी विधायक रुष्ट हुए, फिर जमकर रेलम पेल हुई, राजा भैया को जेल हुई, मुश्किल सरकार का बच पाना, तो माया ने गाया गाना कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। एक और घटना आपको सुनाता हूं कि जब न्योता पाकिस्तान गया, भारत माँ का सम्मान गया, जब शिखर वार्ता टूट गई, दिल्ली की किस्मत फूट गई, जिस दिन था मुशर्रफ को आना, ठाकरे जी ने गाया गाना कि गोली मारो भेजे में भेजा शोर करता है। देश में बहुत जनसंख्या हो गई है, हम 105 करोड़ हो गए हैं। उस पर एक घटना सुनाता हूँ कि पहले 33 करोड़ थे हम, दुनिया भर में बेजोड़ थे हम, फिर आज़ादी का जोर हुआ, घर घर बच्चों का शोर हुआ, गर यूं ही बढ़ते जाएंगे तो वो दिन भी आ जाएंगे, जब दुनिया के कंट्री हमसे बच्चे पैदा करवाएंगे। यही प्रोडक्शन कर सकते हैं साहब। गर यूं ही बढ़ते जाएंगे तो यो दिन भी आ जाएंगे, जब दुनिया के कंट्री हमसे बच्चे पैदा करवाएंगे, जब शुरू हो गई जनगणना तो लालू ने गाया गाना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो आप कह रहे हो, वो अगले साल कहेंगे। एक और घटना आपको सुनाता हूँ, आपकी धमनियों में बह रहे रक्त के संचार को तीव्र करता हूं कि जब 65 और 71 में युद्धों के बादल छाए थे, जब हिंदुस्तानी फौजों ने करतब दमदार दिखाए थे, इंदिरा जी ने ऐसा मारा, चंदा को बना दिया तारा, अब की गर युद्ध हुआ तो फिर भूगोल बदल ही जाएगा, सरहद पर शांत खड़ा होकर हर पाकिस्तानी गाएगा। और क्या गाएगा, अगर आपको लगे कि मैंने एक पंक्ति में 105 करोड़ लोगों की भावना को व्यक्त किया है, आज देश की और आप सबके दिल की आवाज़ भी यही है, तो एक एक व्यक्ति की मैं हाथ उठाकर तालियां और समर्थन चाहता हूं और अपने कहने के सलीके पर आपकी दाद चाहता हूं कि जब 65 और 71 में युद्धों के बादल छाए थे, जब हिंदुस्तानी फौजों ने करतब दमदार दिखाए थे, इंदिरा जी ने ऐसा मारा, चंदा को बना दिया तारा, अब की गर युद्ध हुआ तो फिर भूगोल बदल ही जाएगा, सरहद पर शांत खड़ा होकर हर पाकिस्तानी गाएगा। और क्या गाएगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सा। और मैं कामना करता हूं कि ये हो जाए। दोस्तों एक कविता सुनाता हूं। बाजार में तरह तरह की स्कीम चलती हैं। आजकल कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो उसके साथ आपको एक स्कीम लगानी पड़ती है। एक स्कीम पर आपको कविता सुनाता हूं कि दोस्तों ये दुनिया एक बाजार है और बाजार की एक थीम होती है या वही चीज ज्यादा बिकती है जिसके साथ कोई ना कोई स्कीम होती है। बाजार में ऐसी ऐसी लुभाइनी स्कीमें आती हैं, ऐसी ऐसी लुभावनी स्कीमें आती हैं जिनसे उपभोक्ता ललचाता है और बिना सोचे समझे ही प्रोडक्ट घर ले जाता है। स्कीम आती है कि एक टेलीविजन खरीद कर घर ले जाइए और घर के प्रत्येक सदस्य के लिए नजर का एक चश्मा मुफ्त पाइए। जो महिला अपने पति के लिए शर्ट का कपड़ा लेने आएगी उसे एक साड़ी मुफ्त दी जाएगी। स्कीम है, सुनौरा अवसर मत गंवाइए। सावधान, आपकी पत्नी 4 बेलन ले गई है, आप 8 हेलमेट ले जाइए। सावधान, आपकी पत्नी 4 बेलन ले गई है, आप 8 हेलमेट ले जाइए। एक केले वाले से मैंने पूछा, ये केले कैसे दिए भाई? वो बोला, 100 रुपये दर्जन ले जाइए और स्कीम में 5 दर्जन केलों पर एक पेजर मुफ्त पाइए। बगल वाला 20 किलो आम पर एक मोबाइल की स्कीम चला रहा था। मैंने कहा, 20 किलो आम का उपयोग बताइए। वो बोला, जितना खा सकें खाएं, ना खा पाएं तो आप भी मेरी तरह दुकान लगा कर बैठ जाएं। एक दुकानदार आवाज लगा रहा था, भाईजान, मेहरबान, खानदान, पिकदान, थुकदान, अपने आप को मलेरिया से बचाइए और मच्छर मारने की दवा ले जाइए। 20 पैकेट दवा के साथ एक मच्छरदानी मुफ्त दी जाएगी, जिसे लगाकर सोने पर आपको चैन की नींद आएगी। मैंने पूछा, जब मच्छरदानी लगाकर ही चैन की नींद आनी है तो 20 पैकेट दवा किस लिए ले जानी है? बोला, बातें मत बनाइए, हमारी स्कीम का लाभ उठाइए, बिना दवा के मच्छरदानी नहीं मिलेगी, जाइए। एक डॉक्टर आवाज लगा रहा था, साहब, हे कैंसर के भुक्त भोगी पायरिया के रोगी मिस्टर ढोंगी, हमारे क्लिनिक पर आइए और स्कीम का पूरा लाभ उठाइए। अगर आप अपनी पूरी बत्तीसी हमसे उखड़वाएंगे तो 5 किलो चना और 2 किलो साबुत अखरोट मुक्त पाएंगे। अगर आप अपनी बत्तीसी हमसे उखड़वाएंगे तो 5 किलो चना और 2 किलो साबुत अखरोट मुफ्त पाएंगे। अगर आप फॉर चेंज अपनी दाईं आंख निकलवा कर बाईं की जगह और बाईं आंख निकलवा कर दाईं की जगह लगवाएंगे तो आपको 4 स्टिक और 2 जोड़ी काले चश्मे एकदम मुफ्त दिए जाएंगे। अगर आपको बिक का ऑर्डर हमारे यहाँ से जाएगा तो आपको बाल सफा तेल फ्री में दिया जाएगा। जो लोग हमारी स्कीम के तहत इलाज करवाते हैं वे ठीक भले ना हो मगर हमारी स्कीम का लाभ अवश्य पाते हैं। एक थानेदार आवाज लगा रहा था, साहब, कि जो हमें सेवा का अवसर उपलब्ध कराएगा उस पर चोरी डकैती और छेड़खानी के साथ बलात्कार का आरोप बिना पूछे जबरन लगाया जाएगा। चोरी करने बाया थाने जाइए और प्रति व्यक्ति पुलिस की वर्दी मुफ्त ले जाइए। प्रति व्यक्ति पुलिस की वर्दी मुफ्त ले जाइए। यदि आप बलात्कार के लिए पूर्व सूचना देकर थाने होकर जाएंगे तो सहयोग के लिए स्कीम में 2 पुलिस वाले एकदम मुफ्त पाएंगे। एक मैकेनिक आवाज लगा रहा था, हमारी दुकान पर गाड़ियों की मरम्मत करवाइए, 50 पंचर बनवाने पर एक ट्यूब मुफ्त में पाइए। जो हमारे यहां से ब्रेक शू बदलवाता है उसका जीवन बीमा मुफ्त किया जाता है। दूसरे ने एक अजीब स्कीम चलाई और बोला, 4 मारुति के टायर के साथ एक ट्रक का टायर मुफ्त ले जाइए भाई। मैंने कहा, यार तेरी ये स्कीम बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो एक ट्रक के टायर का क्या करेगा जिसके पास ऑलरेडी एक कार है। वो बोला, यदि आप 16 टायर मारुति के ले जाएंगे तो ट्रक के 4 टायर मुफ्त पाएंगे, फिर जब कभी भी आप ट्रक खरीदेंगे तो ये 4 ट्रक के टायर आपके काम आ जाएंगे। एक कवि कवि सम्मेलन में स्कीम चला रहा था, 20 चुटकुलों के साथ स्कीम में एक कविता सुना रहा था। अरे मैंने कहा, तू सीधी कविता क्यों नहीं सुनाता है, चुटकुले क्यों परोसता है? बोला, क्या करूं यार, बिना चुटकुले सुनाए अब उनका खेल नहीं जमता। दूसरा कवि सेल के साथ फीमेल की स्कीम चलाता था, जहां भी जाता था वहां स्कीम में एक कवित्री मुफ्त ले जाता, मगर पेमेंट होने के बाद मामला पलट जाता था, खुद स्कीम बनकर खाली याद गलाता था। एक कवि बोला, यदि आप मुझे अपने यहाँ कवि सम्मेलन में बुलाएंगे तो आप एक स्कीम पाएंगे, बाकी 4 कवि सम्मेलनों में हम बिना बुलाए ही आ जाएंगे। एक बार एक उग्रवादी मुझसे बोला, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। मैंने कहा, चाहिए तो ले जाइए, मगर भैया कश्मीर के साथ एक स्कीम है, जो कश्मीर चाहेगा उसे बिहार स्कीम में दिया जाएगा और बिहार के साथ में लालू भी जाएगा। बिहार और लालू का नाम सुनते ही वो ऐसा घबराया कि 6 महीने तक कश्मीर में नजर ही नहीं आया। दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो एक दिन वो आएगा जब दूल्हा मंडप के नीचे अपने ससुर से कहेगा, ससुर जी, आपकी बेटी तो बड़ी हसीन है मगर इसके साथ क्या कोई स्कीम है? ससुर कहेगा, जमाई राजा, यहां तो अलग ही सीन है, दुल्हन के साथ नहीं, दहेज के साथ दुल्हन की स्कीम है। आप भी जब कल से बाजार में जाएं तो बिना स्कीम के वापस ना आए। कविता खत्म हो गई, तालियां बजाएं। एक और कविता आपको सुनाता हूं। यहाँ भांति भांति के पति बैठे हैं। पति अनेक प्रकार के होते हैं। मैं एक कविता में आपको पतियों के प्रकार बताता हूँ, हो सकता है उसमें से कोई ना कोई प्रकार आपका भी हो। दोस्तों, पति एक ऐसा प्राणी है जो समाज के हर घर में पाया जाता है। आप आनंद लें और ये महसूस करें कि आप के इर्द गिर्द ही कविता घूम रही है। दोस्तों, पति एक ऐसा प्राणी है जो समाज के हर घर में पाया जाता है और पत्नी द्वारा बहुतायत मात्रा में सताया जाता है। भाभी जी ध्यान रखिएगा, पत्नी द्वारा बहुतायत मात्रा में सताया जाता है। यूं तो पति एक दयनीय पालतू जीव है, जिसे कुछ वैज्ञानिक मनुष्य भी कहते हैं, जो अक्सर रात में जगता है और दिन में दफ्तर में सोता है, जो अक्सर रात में जगता है और दिन में दफ्तर में सोता है, कभी कभी उसे घर में भी सोने की मोहलत मिल जाती है जब वो बीमार होता है। पति प्रायः आसन और प्राणायाम से दूर रहता है, मगर अक्सर उसे ये जबरन करना पड़ता है। मुर्गासन पति का प्रिय आसन होता है। मुर्गासन पति का प्रिय आसन होता है, जिसे वो घर के किसी एकांत कोने में पत्नी की देखरेख में करता है। घर में अधिक तनाव की स्थिति में जब पत्नी का पारा चढ़ जाता है तो ये मुर्गासन शीर्षासन में बदल जाता है। पति की बनावट। पति की दो आंखें होती हैं, जिनसे वह पत्नी की बताई चीजें या लुक छिपकर पड़ोसन की ओर देखता है। अगर उसका या देखना पत्नी की नजरों में गड़ जाता है तो इन्हीं आंखों पर हरी पट्टी या मोटे लेंस का चश्मा चढ़ जाता है। पति के दो कान होते हैं, जिनसे वो दफ्तर में बॉस की डांट और घर में पत्नी की फटकार, बच्चों की फरमाइशें और पड़ोसियों के ताने सुनता है। पति के एक नाक होती है जो समय समय पर कटती और उगती रहती है। पति के दो पैर होते हैं, जो दौड़ दौड़ कर घर और बाजार के काम निपटाने और गाड़ी चलाने के काम आते हैं। पति के दो हाथ होते हैं, जिनसे वो अपनी आय पत्नी के चरणों में चढ़ाता है और संकट के समय अपना बचाव करता है। पति के 32 दांत होते हैं, जो शादी के बाद क्रमशः टूटने या गिरने शुरू हो जाते हैं। मेरे अब तक सब साबुत हैं और शीघ्र ही नकली लगाने पड़ जाते हैं। पति का एक सर होता है, ध्यान चाहूंगा आपका, पति का एक सर होता है जिसमें अक्सर गोबर या भूसा भरा रहता है। अक्सर पत्नियां कहती हैं कि आपके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। पति के एक सर होता है जिसमें अक्सर गोबर या भूसा भरा रहता है। अधिकांश पतियों के सर पर बाल कम या आधे या बिल्कुल नहीं पाए जाते, या उनके शीर्षासन या बेलनों की प्रहार शक्ति पर निर्भर होता है। लगभग सभी पतियों के मूंछ भले ही न हो, मगर पूंछ अवश्य होती है, जो बरसात के मेढक की तरह भूमिगत रहती है और प्रयोग के समय ही बाहर आती है। उसे हिलाकर पति समय समय पर अपने पत्नी भक्त होने का प्रमाण देता है। पतियों के अन्य पशुओं की भांति आत्मरक्षा के लिए सींग नहीं पाए जाते, इस दृष्टि में वो गधे के समकक्ष। पति के प्रकार। विश्व में पति की अनेक नस्लें हैं। कुछ पति दब्बू होते हैं, हरदम दबे दबे सहमे सहमे रहते हैं, अपनी हर बात पत्नी के मूड को देखकर ही कहते हैं। ऐसे पतियों के कपड़ों में जेबें नहीं रहती, पत्नी से बिल्कुल नहीं उलझते हैं और उनके पड़ोसी उन्हें घर का नौकर या अर्दली समझते हैं। आप सब इसी प्रकार के पति हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यह प्रजाति विश्व में हर भाग में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यह प्रजाति विश्व के हर भाग में भरपूर मात्रा में पाई जाती है और पत्नी द्वारा बहुतायत मात्रा में सताई जाती है। कुछ पति पिछलग्गू होते हैं जो अक्सर त्योहारों बाजारों में पत्नी के पीछे सामान का थैला या गोद में बच्चा उठाए नजर आते हैं। ऐसे पति पक्के पत्नी भक्त और सफल गृहस्थ कहे जाते हैं एवं समाज के मध्यम वर्ग में पाए जाते हैं। कुछ विशेष किस्म के पति पत्नी पर तने रहते हैं और 24 घंटे पति बने रहते हैं। या नस्ल धीरे धीरे समाज से लुप्त होती जाए। इसके कुछ अवशेष आदिवासी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पति के कुछ अधिकार एवं कर्तव्य भी होते हैं जो उसे सदैव पति बने रहने में सहायक होते हैं। जैसे पति को यह अधिकार होता है कि वो फ्रिज और तिजोरी को छोड़कर पूरे घर की सफाई कर सकता है। पति को यह अधिकार होता है कि वो फ्रिज और तिजोरी को छोड़कर पूरे घर की सफाई कर सकता है, पत्नी व उसके डॉगी को छोड़कर किसी से भी लड़ाई कर सकता है। सामान्यतः पति को दफ्तर बंद होने के आधे घंटे बाद तक घर से बाहर रहने की छूट होती है। देर रात तक घर से बाहर रहना, कपड़ों में परफ्यूम लगाना, बिना पूछे कुछ खाना या पड़ोसन को देखकर मुस्कराना उसके लिए सर्वथा वर्जित है। पति कुछ देर तक कम वॉल्यूम में टीवी देख सकता है, धार्मिक प्रवचन सुन सकता है व थोड़ी देर टॉमी को घुमाने ले जा सकता है और अपनी आय का 100वां हिस्सा पत्नी से पूछकर खर्च कर सकता है। हर पति का एक तीर्थ होता है जिसे ससुराल कहा जाता है और जहां पति अपनी पूरी आस्था श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार वर्ष में कई बार आता जाता है। हर पति को अपना जीवन बीमा कराना अनिवार्य होता है उसके बाद वो आत्महत्या के लिए स्वतंत्र हो जाता है। वैसे उसके लिए वर्ष में एक बार करवा चौथ का व्रत रखा जाता है फिर ऐसे व्रत उसे साल में कई बार रखना पड़ता है। इस व्रत की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है और पत्नी के लिए महंगे से महंगा हार या साड़ी लानी पड़ती है। दोस्तों, वैसे तो पतियों के भिन्न भिन्न आकार प्रकार और साइज होते हैं, मगर समस्त पति पत्नी के सामने बौने ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, यदि ठीक से देखभाल की जाए तो एक सामान्य पति 60-70 साल तक चल जाता है, वरना 40-50 के आसपास तक बेचारा एकदम ढल जाता है। दोस्तों, वैसे तो यदि ठीक से देखभाल की जाए तो एक सामान्य पति 60-70 साल तक चल जाता है वरना 40-50 के आसपास तक बेचारा एकदम ढल जाता है।
लोग कहे हैं कि हंसी एक प्रार्थना की तरह है। जब आप हंसा रहे होते तो आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते, या हंस रहे होते तो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप हंसा रहे होते हो तो आप ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि ईश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। तो इस हंसाने वाले कवि की अच्छी उम्र के लिए मैं मानता हूँ कि ईश्वर भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे होगो, यो आदमी यो कवि और आगे बढ़े और आगे नई नई ऊंचाइयां छुए। इन्हीं बातों के साथ मेरी बहुत बहुत बधाई यहाँ सुनील जोगी।